तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो अरुणिमा, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम हमेशा मेरी रहोगी, तुम हमेशा मेरी कठपुतली रहोगी। वहीं पर अस्पताल के उस कमरे के बाहर सब खड़े थे और सबने इस वक्त आस्तिक की बात सुनी थी। पृथ्वी हैरानी से आस्तिक की बात सुन रहा था और अरुणिमा के मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसे कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि वो पुराना आस्तिक वापस आ गया है, जिससे बहुत मुश्किल से वो दूर भागी थी। डॉक्टर ने आस्तिक को नींद का इंजेक्शन दिया था क्योंकि वो काबू में नहीं आ रहा था। इंजेक्शन के असर के थोड़ी देर बाद ही आस्तिक को नींद आने लगी और उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी। आस्तिक गहरी नींद में चला गया। आस्तिक का इस तरीके का असामान्य व्यवहार देखकर अरुणिमा डर गई थी। उसे अब डर लग रहा था कि कहीं आस्तिक अपने पागलपन के चलते उसके बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। तभी दरवाज़ा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर को देखकर सब डॉक्टर को घेर लेते हैं और उनसे आस्तिक के बारे में पूछने लगते हैं। डॉक्टर ने अपना सर्जिकल मास्क उतारा और सबको देखते हुए कहा, देखिए राजा साहब की हालत के बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये उनका पैनिक अटैक था जिसकी वजह से वो अपने काबू से बाहर हो गए थे। शायद ये वो यादें हैं जो आपका भाई कभी याद ही नहीं करना चाहता है, और ये यादें जब उनके सामने आईं तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाया। अरुणिमा डॉक्टर की सारी बात सुनती है और पृथ्वी भी सुनता है, लेकिन अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर से क्या सवाल करें। अरुणिमा ने डॉक्टर को देखते हुए कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? आप उन्हें बहुत सारी बातें याद मत दिलाइए जिनसे उनकी दर्दनाक यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे ख्याल से तो आपको उन्हें वो बातें याद दिलानी चाहिए जिससे उन्हें खुशी मिलती हो। उन्हें इस बात पर यकीन दिलाइए कि वो अकेले नहीं हैं, उनका परिवार उनके साथ है, चाहे हालात जैसे भी हैं। लेकिन अरुणिमा घबराते हुए कहती है, डॉक्टर साहब, इस तरीके से पैनिक अटैक अगर हमारे सामने आ सकता है तो अकेले में भी तो आ सकता है ना, और ऐसे में अगर उसने मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाया तो मैं क्या करूंगी? अरुणिमा की बात सुनकर डॉक्टर हाँ में सिर हिलाते हुए कहते हैं, आपका डर जायज़ है, लेकिन जहाँ तक मैंने उनका इलाज किया है और मैं जो समझा हूँ वहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे और बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए वो आप लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। डॉक्टर ने पृथ्वी को देखते हुए कहा, मैं कुछ दवाइयाँ और थेरेपीज आपको बता दूंगा, बाकी याद रहे कि वो इसे रेगुलर लेते रहें। इसके अलावा उन्हें प्यार और अपनेपन की ज़रूरत है। जितना वो अपने परिवार के साथ और अपनों के बीच में रहेंगे उतना ही उनके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मेरी सलाह माने तो आप राजा साहब को कहीं बाहर ले जाएं, कहीं ऐसी जगह जहां पर उन्हें शांति और सुकून महसूस हो और उनके साथ वहां पर अच्छी यादें बनाएं। डॉक्टर ने तो अपनी बात कह दी थी, लेकिन अरुणिमा के मन में अभी भी आस्तिक के उस रूप को लेकर डर बैठ गया था। आस्तिक अगले दिन घर आ गया था और वो अपने कमरे में ही था। अरुणिमा को ना चाहते हुए भी उसके साथ कमरे में रुकना पड़ रहा था। रात के समय आस्तिक को सुलाकर अरुणिमा कमरे से बाहर आती है तो कमरे के बाहर पृथ्वी पहले से ही खड़ा था जो उसका इंतजार कर रहा था। पृथ्वी को देखकर अरुणिमा ने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या पृथ्वी? तुम अपने भाई की हालत जानते हुए भी मुझे कह रहे हो कि मैं उसके साथ एक कमरे में रहूं? लेकिन पृथ्वी ने बहुत रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अरुणिमा प्लीज समझने की कोशिश करो। लेकिन इससे पहले कि पृथ्वी अपने बात पूरी कर पाता, अरुणिमा ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे नहीं लगता है पृथ्वी कि मैं अपना वादा पूरा कर सकती हूँ। तुम्हें जो एक्शन लेना है तुम ले सकते हो। अगर तुम मुझे शारदा देवी मर्डर केस से बाहर नहीं भी निकालोगे तो मेरे बच्चों की परवरिश मिश्री कर लेगी, और जहां तक मैं जानती हूँ जानवी भी मेरे बच्चों को उतना ही प्यार करती है, लेकिन मैं उस पागल के साथ अपने बच्चों को नहीं पाल सकती हूँ। उसका क्या भरोसा है अगर उसने अपने पागलपन के चलते आकर मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा दिया तो? भाई तुमसे प्यार करता है अरुणिमा, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है और कीर्ति ने भी हमेशा पढ़ाई में तुम्हारी मदद की है। ताई जी तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती है। कम से कम हम लोगों के लिए ही सही भाई की मदद करो प्लीज अरुणिमा। अरुणिमा सच में मजबूर हो गई थी, उसकी आंखों से आंसू आ गए थे और उसने पृथ्वी को देखकर कहा, पृथ्वी मेरे पास मेरे बच्चों के अलावा और कोई नहीं है जिसके सहारे मैं जिंदगी गुजार सकती हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे मेरा ये सहारा मत छीनो। तुम्हारा भाई इस समय बीमार है और तुम मुझे और बच्चों को उसके साथ रहने के लिए कह रहे हो, एक बार मेरी नजर से सोचकर तो देखो। पृथ्वी कभी भी अरुणिमा के साथ सख्ती से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अरुणिमा ने उसके सामने कोई रास्ता ही नहीं रखा। जब पृथ्वी ने यह देखा कि अरुणिमा उसके आराम से बात करने पर नहीं मान रही है तो उसने सख्ती से अरुणिमा से कहा, तुम कैसे खुद को एक अच्छी दोस्त कह सकती हो अरुणिमा? हम सब तुम्हारे लिए अपने भाई के खिलाफ गए थे। जब मेरा भाई पूरे देश के सामने बदनाम हो रहा था तो मैंने तुम्हारा साथ दिया था। तुम्हारी वजह से भाई जेल गए हैं, तब भी मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था क्योंकि हम सब तुम्हारी मदद करना चाहते थे। हमें तब लगता था कि भाई ने गलत किया है और हमें तुम्हारा साथ देना चाहिए,
तुम भूल रही हो कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस तुमने वापस लिया था, पर उस केस में जो मेडिकल रिपोर्ट सबूत के तौर पर पेश किया गया था वो मैंने बनाया था। मैं खुद अपने भाई के खिलाफ गया था क्योंकि मुझे तुम्हें इंसाफ दिलाना था। आज मैं तुम्हारे सामने अपने भाई के लिए गिड़गिड़ा रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, अपनी दोस्ती निभाने के लिए कह रहा हूँ, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मेरी दोस्त हो ही नहीं। तुम शायद अब वो अरुणिमा हो ही नहीं जिससे मैंने दोस्ती की थी, या यूं कहूं कि तुम मेरी दोस्ती के लायक ही नहीं थी। पृथ्वी की बात सुनकर अरुणिमा का दिल टूट गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इस घर में सिर्फ आस्तिक ही था जिससे अरुणिमा नफरत करती थी। हाँ, प्रणाली के लिए उसके मन में खटास जरूर थी, लेकिन वो उसे नफरत नहीं करती थी। पर आज जो पृथ्वी ने कहा उसे सुनने के बाद तो अरुणिमा का सब्र का बांध टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रही थी और उसने रोते हुए पृथ्वी को देखकर कहा, एक बात कहूं पृथ्वी, जब से मैं इस घर में आई हूं तब से सिर्फ तुम ही थे जिसे मैंने इस घर में अपना सच्चा हमदर्द माना था। पर कोई बात नहीं, तुमने मेरी दोस्ती को एहसान का नाम दिया है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे हर एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी।